विषय पर आते हैं। हमारी चर्चा थी ईशावास्यमिदं सर्वं, जो कुछ भी संसार में है, जो कुछ भी गतिमान है, जिसमें गति है, जो ट्रांजिएंट है, जो पैशिंग फेज में है, वो सब ईश्वर के द्वारा समाया हुआ है। बड़ा मजेदार बात है, जो जगत शब्द जिसको हम हिंदी में, जो वर्ल्ड को, यूनिवर्स को हिंदी में जगत कहते हैं या संसार कहते हैं, उसका लिटरेरी मीनिंग है, जगत का मतलब जो ऑलवेज मूविंग, जो हमेशा मूवमेंट में है। संसार का की यही मतलब है, जो सरति, जो गतिशील है, हमेशा मूव करता है। दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं मिलेगा हमें इंक्लूड करके भी, जो स्थिर हो, जिनको हम पहाड़ पर्वत जैसा जमीन को स्थिर समझते हैं, उनमें भी बदलाव होता रहता है, बदलते रहते हैं। हर चीज बदलती है, हर चीज में गति रहती है। और इस जो जगत में जो खुद गतिशील है, और उस जगत में रहने वाले वो हर वस्तु जिसमें गति है, जो बदलती है, वो सब ईश्वर का है और सब में ईश्वर है। इसकी चर्चा हमने की, हमने ये चर्चा की कि ईश्वर समस्त जगत के कारण है, वो सबके अंदर है। हम कस्तूरी हिरण की तरह उसको बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं, पर वो हमारे अंदर भी है। तो जब भी ईश्वर को, भगवान को पाने का मन करे, अंदर की यात्रा शुरू करने की है। हमने ये भी चर्चा की, जो कुछ आप आंखों से देख सकते हैं वो ईश्वर हो ही नहीं सकता। ईश्वर वो है जिसने आंखों को देखने लायक बनाया। जहां तक हम कान से सुन सकते हैं वो ईश्वर नहीं, जिसने कान को सुनने लायक बनाया वो ईश्वर है। ये मेरा विचार नहीं है, ये केनोपनिषद का विचार है। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यन्ति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिसकी तुम उपासना कर रहे हो वो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म वो है जिसने तुम्हें देखने लायक बनाया। यत् श्रोत्रेण न, जिसको तुम सुन सकते हो वो ईश्वर नहीं है, जिसने तुम्हें, तुम्हारे कान को सुनने की शक्ति दी वो ईश्वर है। यत् प्राणेन न प्राणीति, जिस जहां तक तुम सांसें ले सकते हो वो ईश्वर नहीं, जिसने तुम्हारे सांसों को लेने लायक बनाया वो ईश्वर है। यन मनसा न मनुते, जिसको तुम मन से सोच सकते हो वो ईश्वर हो ही नहीं सकता, जिसने तुम्हारे मन को सोचने लायक बनाया वही ईश्वर है। क्यों वो देखने लायक नहीं, सुनने लायक नहीं? क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है। क्योंकि अगर वो देखने लायक होगा तो उसका एक लिमिटेशन होगा, उसका एक बॉडी होगा, और जिसकी कोई शरीर होगा, जिसका कोई आकृति होगा, वो एक जगह को घेरेगा। और जो शरीर वाला हो, जो एक खास जगह पर रहता हो, उसकी किसी खास जगह से ही अटैचमेंट होगी। वो इस विशाल ब्रह्मांड को, जिसको नापने पर, जिस ब्रह्मांड में बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं, हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ तारे हैं, स्टार्स हैं, हर तारे के कितने सारे प्लैनेट्स हैं, उसमें पृथ्वी एक है, इतना विशाल संसार को चलाने वाला, बनाने वाले का आकार होगा तो कितना बड़ा आकार होगा। वो सब जगह फैला हुआ है। जो सब जगह फैला हुआ है उसके लिए शर्त है कि उसको सूक्ष्म होना जरूरी है, उसकी सटल फॉर्म में होना जरूरी है। मेरा एक शरीर है, इसीलिए मैं सूक्ष्म हो ही नहीं सकता, इसीलिए मैं एक जगह घेरता हूं। अगर मुझे ज्यादा जगह घेरना हो तो मुझे सूक्ष्म बनना पड़ेगा, मुझे अपने बॉडी को ज्यादा शटलर बनाना होगा, ज्यादा सूक्ष्म बनाना होगा। वस्तु जितना सूक्ष्म होगा उतना ज्यादा जगह घेरेगा। ईश्वर सब जगह है, उसका शर्त है क्योंकि वो सूक्ष्म है। वो बड़ा है, उसका शर्त है कि वो सूक्ष्म है। वो सब जगह है, जहां तक आप देख सकते हो, सुन सकते हो, वो सब में है, पर वो आंखों से देखने लायक, कान से सुनने लायक नहीं। वो अंदर अनुभव के लायक है। अगर आपको कुछ दिखता है वो आपका बहम है, आपको कुछ सुनाई देता वो एक बहम है, जिसकी चर्चा हम पिछले बार किया था। जैसे रोटी में कोई रोटी बनाते बनाते जल जाती है तो कोई पिक्चर बन जाता है, तो किसी को वो क्राइस्ट दिखता है तो किसी को अरविंदो दिखता है। बादल में कोई आकृति बन जाती है, किसी को वो हाथी दिखता है तो किसी को वो गणेश दिखता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी माइंड सेट कैसा है, आपकी आपकी मानसिक मनोअवस्था मनस्थिति कैसी है। आपको वैसा दिखता है, वैसा होता नहीं है। बादल हाथी नहीं है, बादल हाथी जैसा रूप नहीं लेता है, वो कोइंसिडेंटली टूटते फूटते ऐसा बनता है। आपको दिखता है कि देखो हाथी बना है, किसी को दिखता है देखो ये गणेश भगवान अवतरित हो गए। ना वो गणेश है ना हाथी है, वो एक बादल है। आपकी नजरिए से वो आपको हाथी या गणेश दिखता है। तो किसी को क्राइस्ट दिखता है, तो किसी को कोई स्वामी जी दिखता है, तो किसी को कुछ और दिखता है। ये हमारी मानसिक अवस्थाएं हैं। जब हम उसको आंखों से ढूंढते हैं या कानों से सुनने की कोशिश करते हैं, हमारी वैसी ही दशा होती है जैसी एक कहानी में हमने सुना था। एक भिखारी था, वो हर गांव में जाकर भीख मांगता था, और जो दिन भर भीख मांगने के बाद जो कुछ वो लाता था शाम को, उसके पास एक तांबे का बर्तन था। उस तांबे के बर्तन में कुछ पैसा वो रख देता था, बाकी वो खर्च करता था। धीरे धीरे उसका तांबे का जो लोटा बर्तन है वो भर गया पैसों से। उसने सोचा, मैं तो गरीब हूं, भिखारी हूं, तो मैं इतने सारे पैसे, क्या मेरा तो कोई अपना तो है नहीं, भाई बंधु बेटा बीबी, तो मैं पैसे को क्या करूंगा, भीख मांग के गुजारा करता हूं। उसने सोचा ऐसा है कि क्योंकि मैं गरीब हूं, कभी जिंदगी में कोई धर्म नहीं किया, और हमारे लिए धर्म क्या है, तीर्थ जाना, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, तो मैं भी एक बार तीर्थ जाऊंगा, तीर्थ में नहाकर आऊंगा तो मेरा मुझे पुण्य मिलेगा। कहां जाऊं, सोचा कि मैं बनारस या काशी जाऊं, शायद मैंने पहले ये कहानी सुनाई थी। तो उसने ट्रेन पकड़ी और काशी में उतरा। सुबह सुबह भी हुआ नहीं था, अभी सूरज उगा नहीं था, सुबह 4-5 बजे का समय था। उसने सोचा कि मैं सबसे पहले गंगा नदी में जाऊं, वहां नहाऊं, पिता वगैरह को जो पितरों को जो एंशिएंट वो है अपने जो पूर्वज हैं उनको तो पानी दूं, फिर मैं मंदिर में जाऊंगा। तो वो गंगा नदी में पहुंचा, अभी तो कोई था नहीं, अंधेरा था। तो जैसे ही नदी में नहाने के लिए अंदर घुसा, उसके पास जो कपड़े फपड़े जो उसने वो पोटली बांध के लाया था उसको तो किनारे रख दिया। अब ये जो तांबे का बर्तन है जिसमें पैसे हैं उसको कहां रखे, अगर वो किनारे रखकर जाता है तो कोई ले सकता है, कोई उठा के ले जाएगा, चोर वगैरह, अगर साथ लेकर के पानी में जाता है तो वो भीग जाएगा। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करे। उसने काफी देर सोचा कि अच्छा ऐसा करूं, रेतों में गड्ढा खोद के उसमें उसको रख दूं, उस पर रेत भर दूं, जैसे किसी को पता नहीं चलेगा। फिर सोचा कि समस्या ये है कि पता तो मुझे भी नहीं चलेगा जब नहाकर आऊंगा कि मैंने कहां गाड़ा। तो उसने क्या किया, उस रेतों के अंदर अपने तांबे के बर्तन को रखा, उस पर रेतों से एक शिवलिंग बनाया, शिव का एक लिंग जो हम पूछते हैं बनाया, और वह नहाने चला गया। क्योंकि जिंदगी में पहली बार आया है, गंगा को देखा है, बड़े भावना के साथ वो स्नान कर रहा था। तभी एक दूसरा यात्री आया, तीर्थ यात्री, वो भी दूर से ही आया हुआ है, वो भी पहली बार काशी में और गंगा में आया हुआ था। जैसे ही उसने देखा, गंगा के किनारे पहुंचा, देखा एक व्यक्ति गंगा के पानी में नहा रहा है, और किनारे एक रेत का बालू का एक शिवलिंग बना हुआ है। उसने सोचा तो गंगा में नहाने से तभी पुण्य मिलेगा जब गंगा के किनारे शिवलिंग बनाया जाए। तो उसने भी एक शिवलिंग बनाया और गंगा के पानी में नहाने चला गया। सुबह होता गया, लोग आते गए, एक एक शिवलिंग बनता गया और लोग नहाते नहाते चलते गए। जब तक काफी देरों तक भिखारी ने नहा धो करके अपने पितरों को पानी चढ़ाया, सूरज को पानी दिया, बहुत सारे काम होता है जो गंगा जाते हैं, गांव वाले कहकर आते हैं, जब गांव से वो आता है तो गांव वाले कहते हैं भाई मैं नहीं जा पाया, मेरे पापा को मेरे दादा को किसी को मैंने गंगा में पानी नहीं दे पाया, तू मेरे लिए दे देना। गांव वालों के सारे पितरों को पानी देना होता है उसको, तो बड़े सारे काम करने होते हैं। सब करके जब निपट के आया अपने सामान और पैसे क्या बर्तन लेने के लिए, तो देखा काफी सारे लोग गंगा में नहा रहे हैं और गंगा के किनारे बहुत सारे शिवलिंग बन चुके हैं। अब समस्या है कि मेरा शिवलिंग कौन सा है। उसने काफी सोचा कैसे पता करूं, और कोई चीज होता तो पता लग जाता, ये धर्म की आस्था की सवाल है। अगर वो शिवलिंग तोड़ेगा तो लोग पिटाई करेंगे, नास्तिक है, शिवलिंग तोड़ता है वो तो बेचारा भिखारी है। हमारे देश में आप देखेंगे, भारत में बड़े से बड़े रोड पर भी, किसी भी जगह पर, पब्लिक प्लेस पर कोई ठग बदमाश आ जाता है, वो पेड़ों में पहले धागा बांधना शुरू कर देता है, फिर धीरे 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 वहां पूजा पाठ करने लग जाता है, 10-12 साल के बाद जाएंगे वहां मंदिर बन जाता है। पैसे देने वाले उल्लू भी होते हैं, मार्बल पत्थर भी दे देते हैं, पैसे भी दे देते हैं, रोड के ऊपर ही मंदिर बन जा। आप दिल्ली राजधानी है, आप पार्लियामेंट के सामने भी आपको 2-3 सूफी वो मिलेगा, जो सूफी जहां वो चादर चढ़ाते, क्या कहते हैं उसको, कब्रिस्तान तो नहीं, वो जो 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 चादर चढ़ाते हैं, पीर की गद्दी मिलेगी पार्लियामेंट के सामने। हर चौराहे पर, हर रोड को काटना पड़ता है, जो सीधा रोड जाता है उसको काटना पड़ता है, मंदिर बना हुआ है, पीर की गद्दी बनी है, मस्जिद बना हुआ है, गुरुद्वारा बना हुआ है, चर्च बना है, मस्जिद बना हुआ है। सरकार का हिम्मत नहीं कि उसको तोड़े, वो किसी ठग ने, दुष्ट ने जमीन कब्जा करने के लिए करीब धीरे धीरे मंदिर बनाता है, मस्जिद बनाता है, पैसा कमाता है, बैठ के चंदा लेता है, फिर छोटे छोटे गुफाओं जैसा कमरा बना देता है, उसको किराए पर दे देता है दुकानदार को। पर हमारे सरकार के पास आर्मी है, पुलिस है, सब कुछ है, पर हिम्मत नहीं है कि उनको तोड़ा जाए। धर्म की मामला है, लोग विद्रोह कर देंगे, आंदोलन कर डालेंगे, ये तो बेचारा भिखारी है, इसकी क्या औकात है शिवलिंग तोड़ते। सरकार ही नहीं तोड़ पाता है, क्योंकि हम अंधे हैं, हम समझते हैं कि ये जो मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, जिसने भी बनाया वो ठग है, वो चोर है, वो जमीन कब्जा करने के लिए करता है। उसके बावजूद भी हमें हिम्मत नहीं होता है कि हम उसको तोड़ सकें, क्योंकि पब्लिक धर्म के नाम पर अंधा है। वो उस ठग का साथ देगा, सरकार का साथ नहीं देगा, सरकार को वोट चाहिए। बेचारा भिखारी भी क्या करे, शिवलिंगों को तोड़ नहीं सकता, लोग कहेंगे नास्तिक हो, अधार्मिक हो, मंदिर तोड़ता है, और कोई उपाय नहीं है अपने धन पात्र को तोड़ने के लिए। 12 बजे तक सोचता रहा, कुछ उपाय नहीं सूझा, आखिर में उसने एक श्लोक गाया, शायद पंडित रहा होगा, गतानुगतिक लोक न लोक परमार्थिक गंगा सैकतलिंगेन नष्टम मे ताम्र भाजनम। ये जो इंसान है ना, ये गतानुगत, एक के पीछे एक जाने वाला, मतलब फॉलोअर्स हैं। हमें अपना अकल बहुत कम यूज करना होता है, खास करके धर्म के मामले में तो हम सब फॉलोअर हैं, और हम बोलते भी बड़े गर्व के साथ, मैं इसका फॉलोअर हूं। फॉलोअर का मतलब किसी को फॉलो करना, जैसे भेड़, भेड़ के झुंड जब जाता है ना, तो एक भेड़ अगर जो सामने है गलती से कुआं में गिर गया, सारे भेड़ जानबूझ के कुआं में गिरते हैं। हमारी इंसान जो मनुष्य है, उसकी बाकी मामलों में तो दिमाग खूब चलता है, धर्म के मामले में बिल्कुल हम उसी भेड़ की तरह बन जाते हैं। हम इसीलिए पूजा पाठ हवन कीर्तन मंदिर मस्जिद चर्च जाते नहीं है, भगवान को नहीं मानते, या हमें कुछ समझ है, या सचमुच हम जानते हैं हमें क्यों जाते हैं क्या करते हैं, इसलिए कि दुनिया जाती है, पड़ोसी जाते हैं। अब अरब में पैदा होंगे तो आप मुसलमान होंगे, अब हिंदू के घर में पैदा होंगे तो आप हिंदू होंगे। कभी कभी जब हम हिंदू अमेरिका में आ जाते हैं, अपने आस पड़ोस सबको वो जीसस को मानने वाला देखते हैं तो हम भी वो बदल देते हैं धर्म। इसीलिए नहीं कि जीसस अच्छा लगा या कृष्ण बुरा लगा, इसीलिए नहीं, क्योंकि मेरे आसपास सब उसी को मानते तो मैं भी मान पड़ता हूं। इसीलिए नहीं कि अल्लाह अच्छा है या गॉड बुरा है, इसीलिए नहीं मानते, हमें अच्छा बुरा क्या पता। सच बात तो यह है कि अच्छा बुरा पता चले तो आप किसी भी रिलीजन में जाएंगे ही नहीं, जब आपको असलियत पता चलेगा रिलीजन कितने खतरनाक होते हैं। हम मंदिर इसलिए नहीं जाते कि हमारी कोई श्रद्धा है, इसीलिए कि सब जाते हैं, बचपन से जाता रहा हूं, दुनिया जाती है, नहीं जाऊं तो लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, और उसका परिणाम क्या है वो भिखारी बोलता है, गता अनुगति काल, ये पूरा इंसान जो है वो भेड़ों की तरह एक के पीछे एक जाने वाला है। गता अनुगति काल लोक न लोक परमार्थ, किसी को परमार्थ में ईश्वर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब किसी को, मतलब कुछ लोगों को जरूर होगा। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम ऐसी बात करते ना, लोग के नेता चोर है, बहुत लोग शिकायत करेंगे कैसे आप कह दिया नेता चोर है, बहुत सारे नेता अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे होते हैं। आपने कहा कि देखिए अमेरिका में वो गन कल्चर, आपने ऐसे कैसे कह दिया गन कल्चर है, सबके पास तो गन नहीं है। ठीक है, जब बात करते हैं सबकी, मतलब मैक्सिमम की, ज्यादातर लोगों के पास है, हमेशा एक्सेप्शन होता है, एक्सक्लूसिव हमेशा होते हैं। ज्यादातर लोगों को ईश्वर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, श्रद्धा नहीं है, न लोक परमार्थिक, और उसका परिणाम क्या होता है, गंगा सैकत लिंगेन नष्टमेताम्रभाजनम, इस गंगा की रेतीली शिवलिंग के, शिवलिंग से मेरे जिंदगी भर की कमाई बेकार चला गया है, उसका परिणाम है। जब हम सोच समझ के, हमें जब कुछ पता नहीं होता, हम धर्म में अंधों की तरह गति करते हैं, हमारी वही दशा होती है जो भिखारी वर्णन करता है। हम शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से सोखे जाते हैं, हमारा शोषण होता है, और शोषण में ही हम आनंद अनुभव करते हैं। और मैं एक चीज हमेशा कहा करता हूं, खास करके धर्म में, जब तक धर्म को मानने वाला, धर्म मतलब जिसको आजकल हम धर्म मानते हैं, संप्रदाय या रिलीजन, आम आदमी जब तक लूटा ना जाए तब तक उसको लगता ही नहीं कि मैंने कोई धर्म कार्य किया है। आप उसको अगर सही चीज बताएंगे वो उल्टा नाराज होगा, कहेगा ये नास्तिक है, ये हमें भड़काता है। जब तक किसी पंडित को माता पिता के मृत्यु पर 10-20 पंडितों को खिलाना दे, 1000-1500 दान मनाना दे, उसको लगता नहीं कि मां बाप खुश होंगे ऊपर। जीते जी मैं मां बाप को 15 दिन खाना ना खिलाऊं तो भी चलेगा, पर मरने के बाद पंडितों को खिलाना बड़ा जरूरी है। मतलब जब तक मुझे कोई उल्लू ना बलाए या मैं खुद उल्लू ना बन जाऊं, तब तक मुझे लगता नहीं कि मेरे कुछ पुण्य किया, मेरे मां बाप को कुछ, मरने वाले मां बाप को कुछ शांति मिलेगी। और कोई पंडित जाकर समझा दे ये बेकार है, ऐसा मत करो, अगर करना चाहते हो, कुछ देना चाहते हो मां बाप के नाम पर, तो जाओ किसी ऑर्फनेज में, किसी अनाथालय में दान दे दो, किसी गरीब को दान दे कराओ, किसी हॉस्पिटल में डोनेट करो। ये तो नास्तिक है, मुझे भड़का रहा है। और इसका परिणाम है हम धन भी खोते हैं, शरीर से भी यातनाएं सहते हैं, और मानसिक शांति, यकीन मानिए, मंदिर मस्जिद में जाने वाले जितने लोग, जहां भी पूरे दुनिया में किसी भी रिलीजन को मानने वाले जाते हैं, जो भगवान को मान के जाते हैं और जो नहीं मानते, उनके मेंटल स्टेटस में, मानसिक दशा में ज्यादा अंतर नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि जो जाते हैं उनमें भी कोई भावना नहीं होती, जो नहीं जाते उनमें भी भावना नहीं, और जिनकी भावना है वो जाएं न जाएं तब भी वो शांति में रहेंगे। धर्म का जो बेसिक रिजल्ट है, जो फल है, वो है कि हमें वो सुकून दे, शांति दे, सुख दे, हमारे चरित्र को बदल डाले, हमारे सोच को बदले, हमें अच्छा बनाए, अंदर से अच्छा बनाए, बाहर से अच्छा बनाए, हमें उस ईश्वर को पाने लायक बनाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम उस भिखारी के तरह उसमें पड़े हैं। वो ईश्वर सर्वव्यापक है, वो मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, गिरजाघर में भी है, वो उससे बाहर भी है, सब जगह है। इसीलिए यजुर्वेद कहता है, सपर्यगा शुक्रमकायम अब्रणमश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी स्वयं भू परिभूर याथा तथ्यतो व्यदधा शाश्वती व्य समाभ्यः। वो ईश्वर सर्वव्यापक है, कण कण में है, उसका अपना कोई शरीर नहीं, क्योंकि शरीर वाला हर जगह नहीं हो सकता, उसकी कोई नस नाड़ियां नहीं, उसका कोई मन नहीं, उसकी कोई हड्डी नहीं है, वो खुद को बनाने वाला है, वो संसार को बनाता है पर खुद को भी बनाता है, वो ज्ञान पूर्ण है, वो आनंद पूर्ण है। इसीलिए कहा कि क्योंकि वो सर्वव्यापक है, जिन ऋषियों ने, मुनियों ने, ज्ञानियों ने, योगियों ने, भक्तों ने उस परमात्मा को जाना, उन्होंने जरूर ये कहा। क्या कहा? यदि मन्यसे सुवेद इति दभ्रमेवापि। बोला अगर किसी ने किसी को लगा कि मैं उस ईश्वर के या ब्रह्म को जानता हूं, परमात्मा को, भगवान को जानता हूं, तो तुम बहुत छोटी सी चीजें जानते हो। जिसने भी दावा किया मैं समुद्र को जानता हूं, वो सचमुच कुछ नहीं जानता है। समुद्र में जब आप डुबकी लगाओगे तो आप एक एरिया में डुबकी लगाओगे, तो आप एक समुद्र के एक हिस्से को ही जान पाओगे। समुद्र के बाहर बैठ के किताबें पढ़ के जानोगे तो वो आपका इंफॉर्मेशन है, किताबी ज्ञान है। तो समुद्र को समग्रता से जाना नहीं जा सकता, जबकि समुद्र एक छोटी सी चीज है। ये विशाल ब्रह्मांड को संपूर्णता से नहीं जाना जाता। और हमारे वैज्ञानिकों को देखिए, हम तो अपने सूरज और उसके आसपास जो प्लैनेट सिस्टम है उसी को ठीक से नहीं समझ पा रहे, हम अपने गैलेक्सी को ठीक से नहीं समझ पा रहे, ये संसार को क्या समझेंगे। जितना भी जाना हम बड़े थोड़े से जानते हैं उसको। वह ईश्वर सर्वव्यापक है, सब में समाया हुआ है। अगला स्लाइड। इसीलिए तेन त्यक्तेन भुंजी था। आप भोगो, भुंजी था मतलब आप भोग करो, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय दिस होल वर्ल्ड, इट्स योर, बट विद द फीलिंग ऑफ रेनुंसिएशन, इस वैराग्य भावना के साथ भोगो। क्यों? वैदिक संस्कृति में त्याग का या डोनेशन का महत्व कम है। आप कहेंगे ऐसे कैसे? अब वेस्टर्न वाले दावा, वो वेस्टर्न स्कॉलर और उनको मानने वाले हम लोग भी यही मानते हैं कि हिंदू लोग बड़ा कम देने में इंटरेस्ट होते हैं, त्याग करने में इंटरेस्ट होते हैं। उसके पीछे जो बैकग्राउंड रहा वो समझना बड़ी जरूरी है। हमें, हमारा शास्त्र व हमारी संस्कृति हमें ये बताती है कि तुम देने लायक हो ही नहीं। इसीलिए जब भी आप हवन करते हैं, हवन की जो आहुतियां देते हैं, हर स्वाहा के बाद आप बोलते हैं अमुकाय स्वाहा इदं न मम, इट्स फॉर दिस गॉड बट इट्स नॉट माइन, ये मेरा नहीं है, मैं सिर्फ एक निमित्त हूं, मैं एक एक इंस्ट्रूमेंट हूं, मेरे से पहले भी ये धरती थी, ये ज्ञान था, ये बुद्धि विवेक था, मैं जब पैदा हुआ तो मैं बुद्धि लेकर नहीं आया, बुद्धि मैंने क्रिएट नहीं किया, मैंने अपने मन को क्रिएट नहीं किया, मैंने अपने शरीर को नहीं बनाया, मुझे सब कुछ मिला, मुझे ये नहीं पता किसने दिया, और मैं मानता हूं क्योंकि दुनिया मानती है ईश्वर ने दिया है। वो ईश्वर को मानो तो ईश्वर ने दिया, नहीं माना तो जिसने भी दिया, पर ये सब कुछ मैंने अपने आप नहीं बनाया। और इस मन से, बुद्धि से, शरीर से, ज्ञान से जो कुछ मैंने पाया वो मेरा कैसे हो सकता है? वो दुनिया में पहले से मौजूद है। किसान अनाज पैदा करता है, मैं पैसा देकर लाता हूं, किसान अनाज पैदा करे ही नहीं तो आपके पास करोड़ों डॉलर्स हैं। पर किसान गेहूं नहीं पैदा कर रहा है, अनाज पैदा नहीं कर रहा है, तो आप क्या खाएंगे? आप सड़ के मरेंगे, क्योंकि आप डॉलर को तो खा नहीं सकते, खाने के लिए अनाज चाहिए, और अनाज आप पैदा नहीं कर रहे। किसान अनाज पैदा करता है क्योंकि मिट्टी में अनाज पैदा होने लायक शक्ति है। मिट्टी में जिस दिन ये पैदा होने की शक्ति खत्म हो जाए तो किसान कहां से अन्न पैदा करेगा? मिट्टी में वो शक्ति है तो मिट्टी में वो शक्ति अपने आप क्रिएट नहीं किया, उसको शक्ति किसी ने दी है। इसीलिए ये दावा करना कि ये मेरा, ये सरासर गलत है। ये उसी का है, ये सोच के भोगो, भोगने में कोई मना नहीं है, क्योंकि जीवन मिला है भोगने के लिए, पर उस भोग के पीछे जो फीलिंग होनी चाहिए, जो इमोशन होना चाहिए कि ये मेरा नहीं है, ये किसी दूसरे का है। जब मैं किसी को दूं, मैं नहीं दे रहा हूं, किसी का दिया हुआ है, मेरे पास ज्यादा है, मैं उसको बांटूं, मैं भी जैसे ईश्वर का संतान हूं, दुनिया में हर प्राणी ईश्वर का संतान है। अगर मेरे पास ये मेरे जरूरत से ज्यादा है तो मेरा धर्म है कि मैं दूं, इस भावना से नहीं कि मैं देता हूं, ये मेरा नहीं है। मेरे मरने से पहले भी ये था, मेरे मरने के बाद भी ये रह जाएगा। तेना त्यक्ते न भुंजी था, उसी का दिया हुआ समझकर भोगो, इसी को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का अर्थ नहीं है कि छोड़ दो, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, कपड़े छोड़ दो, पैसा छोड़ दो, नहीं। वैराग्य का अर्थ है जो कुछ तुम्हारे पास है उसके प्रति अटैचमेंट छोड़ दो, आसक्ति छोड़ दो। आसक्ति छूटेगी कब? आसक्ति तो छूटेगी नहीं जब मैंने ही कमाया, मेहनत से कमाया, पसीना बहाकर कमाया। कैसे मैं अटैचमेंट छोड़ दूं? पड़ोसी नहीं कब्जा कर लेगा? मैं घर में रहूं और घर के प्रति अटैचमेंट छोड़ दूं और पड़ोसी को पता चले कि इसका कोई घर के साथ कोई मोह माया नहीं है, वो कब्जा करना लेगा? कैसे छोड़ दूं? पर इस भावना के साथ आना कि ये घर, ये जो दुनिया मैंने बनाई, इकट्ठा किया, वो मेरे से पहले भी था, मेरे बाद भी रहेगा। जब इस वैराग्य, इस राग को, इस अटैचमेंट को छोड़ता हूं मैं, वस्तु को नहीं छोड़ना, वस्तु के भोग को छोड़ना मना नहीं, छोड़ने के लिए नहीं कहा, वस्तु के प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ देने से ही दुनिया ज्यादा सुखी हो जाती है। फिर आप देंगे नहीं, आपसे दिया जाएगा। इसीलिए हमारे यहां क्या कंसेप्ट है कि त्याग है, वैराग्य की भावना है। इसीलिए आप देखेंगे हमारे यहां चैरिटी शब्द का कम हिंदुओं में प्रयोग होता है। इस चैरिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? धर्मार्थ। धर्म, धर्म क्या है? धर्म का अर्थ नहीं कि उसके बदले पुण्य कमाना है। धर्म मतलब राइटेसनेस, इट्स योर राइटेसनेस, ये आपकी ड्यूटी है कि आप दें। आप देकर किसी को एहसान नहीं कर रहे हैं, आप दे रहे हैं, दूसरा आप पर एहसान कर रहा है कि दूसरा ले रहा है। ये हिंदुइज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये समझना बड़ी जरूरी है। इसीलिए देने के बदले जब हम कुछ डिमांड करते हैं तो हमारे शास्त्र उसको बड़ा घटिया समझते हैं। अगर दे करके उसके बदले कुछ पाने की चाहत रखते हैं, बाकी धर्मों में बुरा नहीं माना जाता, पर हिंदुओं में इसको बुरा माना जाता है, हिंदू शास्त्रों में इसको फॉरबिडन निषिद्ध माना जाता है कि आप जब देते हो उसके बदले चाहत मत रखो, क्योंकि बदले में चाहत होगा मतलब आप कुछ दे रहे हो। जब चाहत नहीं रखोगे, आप इस भावना के साथ दे रहे हो ये मेरा नहीं है, मेरे द्वारा जो इकट्ठा किया गया वो मेरे लिए इतना ज्यादा नहीं है तो मैं दूं। तेना त्यक्ते न भुंजी था, इसको समझने के लिए छोटी सी कहानी कहूं। आप एक ऑफिस में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, जहां भी काम करते हैं, अब 8 घंटे 10 घंटे उस कंपनी में काम करते हैं, आपके घर में जो कुछ सामान है, आपके बैंक में जितने बैलेंस है, उस कंपनी के कारण है क्योंकि वही सैलरी देता है। उस कंपनी में कभी आग लग जाए, घर टूट जाए, वहां की टीवी, वहां का कंप्यूटर, वहां के डेस्क, वहां के ऑफिस खराब हो जाए, आपकी रात की नींद खराब नहीं होती है। पर वही चीज अगर आपके अपना हो, आपके आपके घर का हो, जिस घर में आप जागे हुए तो दिन में मुश्किल से 1-2-3 घंटे 4 घंटे रहते हैं, जब तक ऑफिस में काम करते हैं, जब तक आप रिटायरमेंट नहीं लेते हैं, क्योंकि आपका 8 घंटे से ज्यादा समय तो ऑफिस में जाता है, और दिन में कितने देर तक आप जागे रहते हैं, बाकी 7-8 घंटे तो आप सोते हैं दिन घर में। जिसको आप ज्यादा यूज करते हैं उसके साथ कुछ खराब हो जाए, अच्छा हो जाए, आपको ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। जिसको आप कम यूज करते हैं उसको थोड़ा सा चोट लगे आपको दर्द होता है। सामान को तो यूज करने से मतलब है, दर्द से क्या मतलब है? दर्द है अटैचमेंट के कारण। रामायण में एक कहानी आती है, महर्षि जनक, उनको महर्षि ने राजर्षि कहा जाता था, और राजा भी थे ऋषि भी थे, हमेशा ऋषियों के संगति में, जो सत्संगों में बैठा करते थे, और वशिष्ठ ऋषियों के मुखिया होते, उनको सबसे ज्यादा सम्मान मिलता था। बाकी ऋषियों को हमेशा लगता था वशिष्ठ जनक को ज्यादा फेवर करते हैं, ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, हम लोगों के कंपैरेटिवली जनक को ज्यादा सम्मान मिलता है, शायद इसीलिए क्योंकि जनक राजा है और वशिष्ठ राजा होने के नाते जनक को ज्यादा फेवर करता है, जबकि ऋषियों के संगति में ऋषियों का सम्मान होना चाहिए। भाई जहां विद्वानों की सभा हो वहां नेता को क्यों रेस्पेक्ट मिले, धनी को क्यों रेस्पेक्ट, ज्ञानी को मिले। जहां धनियों की सभा है वहां धनी को मिले। अगर ज्ञानियों के सभा में धनी को रेस्पेक्ट मिलता है तो इसका मतलब ज्ञानी लोग बिके हुए हैं धनी के सामने। आप अपनी चीज को इंपोर्टेंस नहीं दोगे तो दुनिया आपको क्यों रेस्पेक्ट करेगा। एक ऋषि दूसरे ऋषि के त्याग को जानता है, अगर ऋषि ऋषि को रेस्पेक्ट न करे तो दुनिया क्यों करेगी। तो बाकी ऋषियों को लगा वशिष्ठ जो है जनक को ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो राजा है। वशिष्ठ को पता चला और वो इस भावना से तो जनक को रेस्पेक्ट नहीं देते थे, क्यों देते थे ये साबित करने के लिए उन्होंने एक खेल रचा। कुछ दिनों के बाद आश्रमों से एक व्यक्ति दौड़े दौड़े आया और साधना की सत्संग में उन्होंने घोषणा की, ऋषियों के आश्रमों में जहां उनकी आश्रमों की बस्ती है जंगल में वहां आग लग गया है। तो ऋषि लोग दौड़े अपने आश्रमों में, वो आजकल के ऋषि वाले तो है नहीं जो 5-स्टार होटल नुमा आश्रमों में रहते हैं, लंबी लंबी गाड़ियों में चलते हैं, उसके बावजूद भी अपने आप को सन्यासी त्यागी वगैरह वगैरह संबोधन से संबोधित करते हैं। वो बेचारे रियल ऋषि थे, सन्यासी थे, जिनके पास रात को क्या खाना सुबह नहीं होता था, सुबह क्या खाए रात को नहीं होता था, झोपड़पट्टी में रहते थे जिसमें घास फूस से बना हुआ, अंदर 2-1 आधा लोटा होगा और हवन करने के लिए समिधाएं सामग्रियां और 2-4 लंगोट एक अच्छा, बस घास फूस कुछ फल पत्ते और क्या होगा। बचाने के लिए दौड़े ऋषि लोग, आग नहीं लगा था पर देखा आग लगा नहीं था, वो नाराज हुए, बात खत्म हो गई। अगले महीने सत्संग चल रहा है, पर महीने के गैप के आनंद एक व्यवधान के बाद दोबारा वैसे ही सत्संगति चल रही है। राजभवन से दौड़े दौड़े दूत आया, संदेश दिया कि राजभवन में आग लग गया है। सभी लोग बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई हलचल कहीं से कोई आवाज नहीं आ रहा है। लोगों ने जनक की तरफ देखा, बिल्कुल बाकी लोगों की तरह, बाकी लोगों में तो उतावला है, वो अब भी शांत है, ध्यान में है, मुद्रा में है, शांति में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वशिष्ठ ने बाद में ऋषियों के आश्रम में गए, उनको पूछा, जब आपके आश्रम में आग लगने का खबर मिला तो आप क्यों दौड़े थे? बोले बचाने के लिए। क्या बचाने के लिए? आश्रम। वो आश्रम में आपके क्या है? घास फूस की झोंपड़ी, कुछ फल और पत्ते, और आप कहते हो आप सन्यासी हो, आप छोड़ छाड़ के आए हो। क्या छोड़ा? घर छोड़ा, फूल पत्ते के झाड़ फूकों की झोंपड़ी बनाई, पर झोंपड़ी में उतने ही अटैचमेंट है जितना शहर में घर छोड़कर आया। तो आपका छोड़ना ही है पब्लिक को दिखाने के लिए। आप सिर्फ रेस्पेक्ट पा सकते हैं क्योंकि आपने छोड़ा, अंदर आपकी अब भी बेचे ही नहीं है। पहले जितनी अटैचमेंट आपके बड़े से भवन में था, महल में, आज उतनी ही अटैचमेंट ये झाड़ फूंक वाले झोंपड़ी में है। पर आपने आपको आप गर्व के साथ ऋषि मानते हो। जनक राजा है, राजमहल में करोड़ों की संपत्ति है। जनक को भी समाचार मिला आग लगा है, जनक के दिल में कोई धड़कन नहीं पड़ा, उसकी आंखों में कोई चंचलता नहीं दिखी, उसके मुंह में कोई बेचैनी नहीं दिखी, उतना ही शांत, उतना ही कूल दिखा। इसी को कहते हैं ऋषित्व, सन्यासित्व, कि आप भोगो विदाउट अटैचमेंट। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। जो आप मेहनत से कमा सकते हो भोगो, अगर किसी परिस्थिति में कोई चला जाता है तो छोड़ो, अगर आता है तो स्वीकार करो, इस भावना के साथ कि सब कुछ ईश्वरीय है, तो जीवन ज्यादा आसान होता है, शांति जल्दी आसानी से आती है, सुख ज्यादा देर तक रहता है, बेचैनी कम होती है। अगला करके समाप्त करूंगा, मां गृधा कश्यस्वी धनम, इसीलिए किसी पर लालच मत करो। क्यों लालच मत करो? नीचे दिया, सिंस हुम इज दिस वेल्थ, ये धन किसका है, मतलब ये किसी का नहीं है। जिस जमीन पर मैंने घर बनाया है, अपना नाम प्लेट लगाया है, वो तो जमीन में जान होती वो कितना जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसती, आ गया दूसरा नाम प्लेट लगाया, क्योंकि 20 साल पहले किसी दूसरे का नाम प्लेट था, 50 साल बाद किसी और दूसरे का नाम प्लेट होगा। लाखों सालों से यह धरती वहीं के वहीं है। जिस जमीन पर मेरा मकान है, उस जमीन पर लाखों लोग गाड़े जा चुके हैं, जलाए जा चुके हैं, मर चुके हैं, घर खरीद चुके हैं, उस जमीन को पाने के लिए किसी समय दो भाइयों में लड़ाई हो चुकी है, किसी राजा ने दूसरे राजा को मार चुका है। इसी जमीन के ऊपर कितने लोगों ने नेम प्लेट लगा चुके हैं, पर हर मारने वाला मर गया, हर कब्जा करने वाला मर गया, हर नाम प्लेट लगाने वाला मर गया, मैं वहीं के वहीं हूं, और आगे भी लाखों सालों तक मैं वहीं पड़ी रहूंगी। पर ये लोग आते जाएंगे, अपना बोल बोल के चिल्लाते जाएंगे, तनाव पालते जाएंगे, ब्लड प्रेशर हाई करते जाएंगे, हार्ट स्ट्रोक में मरते जाएंगे, मैं वहीं के वहीं हूं, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं है, ये ईश्वर का है। ये धन किसका है, ये सवाल है। जिस दिन मेरे घर में रखे हुए धन के बारे में मैं समझ जाऊं कि ये धन किसका है, तो मेरी बेचैनी कम हो जाएगी, मुझे ज्यादा सुकून मिलेगा, रात की नींद अच्छी होगी, कि सब कुछ ईश्वर का है। मैं जितने दिन तक जीऊं, आनंद से जीऊं, शान से जीऊं, बांध से जीऊं, आराम से जीऊं, पर धन के साथ अटैचमेंट मेरी बर्बादी है। इसीलिए लालच मत करो, क्योंकि धन किसी का नहीं। जब कहते हैं धन किसी का नहीं, इसका अर्थ नहीं कि पड़ोसी का है या मेरा नहीं है, या मेरा है पड़ोसी का नहीं। जब मेरा नहीं तो पड़ोसी का भी नहीं है, उसको भी मरना है, मुझे भी मरना है। जमीन दोनों की वहीं के वहीं पड़ी रहेगी। जो बीच में फेंस है वो बदलता रहेगा, कभी ये फेंस उठ के वो दो मकान बन जाएंगे, कभी एक मकान बनेगा, कभी यहीं पर 100 मकान बनेंगे, पर जमीन उतनी बड़ी वहीं रहेगी। धन किसी का नहीं होता, संसार किसी का नहीं होता, हम सिर्फ उसको भोग सकते हैं, वो ईश्वर का है। इस भावना के साथ हम जीने लगे, सचमुच जीवन ज्यादा आसान हो जाता है, जीवन ज्यादा खुशनुमा हो जाता है। यही हमारा ये ईशावासी उपनिषद का संदेश है। आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम